بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 3 ہے. آج ہم کتاب دانش اقبال کے چند پہلو ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف طالب حسین سیال ہیں. یہ کتاب آپ کی خدمت میں اسفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 3. اقبال جبریل اور ابلیس کے مکالمے کو اس طرح نظم کرتے ہیں. جبریل پوچھتا ہے، ہم دمے دیری نہ، کیسا ہے جہاں نرنگ بو؟ ابلیس جواب دیتا ہے، سوزو سازو درو داغو جستجوے آرزو. جبریل کہتا ہے، کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند، چشمِ یزدان میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو؟ ابلیس جواباً کہتا ہے، ہے میری جرت سے مشتقات میں ذوق نمو، میرے فتنے جامائے عقل و خرد کا تار و پو. دیکھتا ہے تو فقط ساحل سرز میں خیر و شر، کون طوفان کے تماچے کھا رہا ہے؟ میں کہ تو میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ. بال جبریل. اقبال ہر اس عمل کو خیر سمجھتے ہیں جو انسانی شخصیت کو تقویت پہنچاتا ہو اور جس سے انسانی خودی بیدار اور محفوظ ہوتی ہو، اور ہر وہ عمل شر ہے جو انسانی شخصیت کو کمزور کرتا ہو اور جس سے انسانی خودی کو نقصان پہنچتا ہو. اپنے ایک مقالے میں اقبال نیکی اور بدی کی اس طرح وضاحت کرتے ہیں، نیکی انسان کے اس احساس شخصیت کو ترقی دینے والی ہے اور بدی اس احساس کو کمزور کرتی ہے. پس نیکی ایک قوت، طاقت اور توانائی ہے، بدی ایک کمزوری ہے. انسان میں اس کی اپنی شخصیت کا ایک تیز احساس پیدا کر دو، اس کو خدا کی زمین میں بے خوف اور آزاد پھرنے دو، دوسروں کی شخصیتوں کی عزت کرے گا اور وہ بالکل نیک ہو جائے گا. اقبال اپنی بیاض میں لکھتے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ فعلیت کی ان تمام صورتوں سے دستبردار ہو جائیں جو شخصیت کو تحلیل کرنے پر مائل ہوں، مثلاً عجز و انکسار، قناعت، غلامانہ تابعداری وغیرہ. اس کے برخلاف بلند حوصلگی، اعلیٰ ظرفی، سخاوت اور اپنی روایات تو قوت پر جائز فخر ایسی چیزیں ہیں جو شخصیت کے احساس کو مستحکم کرتی ہیں. شخصیت انسان کا عزیز ترین سرمایہ ہے، لہذا اسی کو خیر مطلق قرار دینا چاہیے اور اپنے تمام اعمال کی قدر و قیمت کو اسی معیار پر پرکھنا چاہیے. خوب ہے وہ جو شخصیت کے احساس کو بیدار رکھے، اور نہ خوب وہ ہے جو شخصیت کو دبائے اور بالآخر اسے ختم کر دے، کر دینے کی طرف مائل ہو. اگر ہم وہ طرز زندگی اختیار کریں جس سے شخصیت کو تقویت پہنچے، تو دراصل ہم موت کے برخلاف نبرد آزما ہیں. موت جس کی ضرب سے ہماری شخصیت کی اندرونی قوتوں کی ترتیب گڑبڑ ہو جاتی ہے، پس شخصیت کی بقا ہمارے اپنے اختیار میں ہے. اس کے حصول کے لیے جدوجہد ضروری ہے. یہ خیال جو یہاں پیش کیا گیا ہے دور رس نتائج کا حامل ہے. اقبال اپنی نظم بعنوان خوب و زشت میں فرماتے ہیں، جہاں خودی کا بھی ہے صاحب فراز و نشیب، یہاں بھی مارکا آ رہا ہے خوب سے ناخوب. نمود جس کی فراز خودی سے ہو وہ جمیل، جو ہو نشیب میں پیدا کبھی ہو نا محبوب. اقبال کے نزدیک سر دو شعر اور کتاب و دین کا مقصد بھی خودی کی حفاظت کرنا ہے. اگر سیاست و دین اور فنون لطیفہ خودی کی حفاظت کرتے ہیں تو وہ سراسر خیر ہیں، اور اگر وہ خودی کی حفاظت نہیں کرتے تو وہ شر ہیں. فرماتے ہیں، سرور و شعر و سیاست، کتاب و دین و ہنر، گوہر ہے ان کی گرا میں تمام یک دانہ. اگر خودی کی حفاظت کریں تو عین حیات، نہ کر سکیں تو سراپا فسون و افسانہ. بال جبریل. اقبال کے نزدیک انسانی شخصیت کوئی شے نہیں بلکہ ایک عمل ہے. شخصیت کوئی جامع دیا بنی بنائی چیز نہیں، اور نہ ہی یہ پہلے سے مقدر ہے. شخصیت کوشش اور عمل سے بنتی اور بگڑتی اور تعمیر ہوتی ہے. इंसान जब कोई नेक अमल करता है तो उसका उसकी शख्सियत पर अच्छा असर पड़ता है, और जब कोई बुरा अमल करता है तो उसका उसकी शख्सियत पर बुरा असर पड़ता है। कोई अच्छाई और बुराई के असरात से मुफर नहीं। कुरान मजीद ने हकीकत की तरफ इस तरह इशारा किया है, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ। सूरह जलजाल, सूरह नंबर 99, आयत नंबर 7 और 8। तर्जुमा, और जो कोई जर्रा भर नेक अमल करता है वो जरूर उसे देखेगा, और जो कोई जर्रा भर बुरा अमल करता है वो उसे जरूर देखेगा। इंसान अपने तखय्युलात और तमन्नियात और आमाल व अफ़ाल से अपनी शख्सियत हर लम्हा तख्लीक करता है। अगर उसके जहन में बुरे ख्यालात आते हैं या वो अपनी जल्दबाजी की वजह से किसी बुराई का मुर्तकिब होता है तो उसकी शख्सियत पर बुरे असरात पड़ते हैं। जैसा कि पहले बयान किया गया है, इकबाल के नज़दीक शर इंसान की सरिश्त में दाखिल नहीं है, बल्कि वो अपनी तबीयत की उजलत के बायस शर की तरफ रागिब हो जाता है। इंसान जब कुछ सुनता है या कोई मंजर देखता है तो उसका फौरी रद्द अमल जल्दबाजी का रद्द अमल होता है, लेकिन अगर वो थोड़ी देर के लिए तवक्कुफ करे और सोचे तो उसका रद्द अमल माकूल हो जाता है। गोया उजलत का अमल हैवानी जिबिल्लत का अमल है, और गौर फिक्र और सब्र तहम्मुल तहम्मुल का अमल माकूल अमल है, और यही असल इंसानी रवैया है। इस इंसानी रवैये को हम हिकमत से ताबीर कर सकते हैं। कुरान हकीम के अल्फाज में, जिसको हिकमत दी गई उसे खैर कसीर अता की गई। सूरह बकरा, सूरह नंबर 2, आयत नंबर 269। इनफरादी या कौमी सतह पर जो भी फैसला उजलत में किया गया हो और जो भी कदम उजलत में उठाया गया हो वो हमेशा गलत होता है और उसका अंजाम खैर नहीं होता। उसके बरक्स अफराद या अकवाम जो भी फैसले गौर फिक्र और बाहमी मुशावरत और सब्र आजमा बहस व तमहीज के बाद करते हैं, और जो कदम काफी गौर गौर से और मुशावरत के बाद उठाए जाते हैं वो हमेशा अच्छे नतीजे के हामिल होते हैं। शैतान इंसान की फितरत की इस आजलाना खासियत से फायदा उठाता है, उसको शहवात मुजयन करके दिखाता है, इसलिए इंसान जज्बात की रौ में बहकर गलत कदम उठा लेता है। और कुरान में इरशाद होता है, ज़ुय्यना लिन्नासी हुब्बुश शहवाती من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا। سورة آل عمران, سورة نمبر 3, آیت نمبر 14। ترجمہ, لوگوں کے لیے مرغوبات نفس, عورتیں, اولاد, سونے چاندی کے ڈھیر, چیدہ, گھوڑے, मवेशी और ज़रई ज़मीनें बड़ी खुश आइंद बना दी गई हैं, मगर ये सब दुनियावी जिंदगी का सामान है। हुब्बे निसा व बनीन और मालो दौलत की ख्वाहिश, मवेशी और ज़रई ज़मीन की तमन्ना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इन ख्वाहिशात को इख़लाक़ इक़दार और उसूल एतदाल का पाबंद करना लाजिम है। अगरचे ये काम बड़ा मुश्किल है, अक्सर इंसान तरगीबात का मुकाबला नहीं कर सकता। इन्हीं तरगियात नफ्स से कत्लोगारत का बाजार गर्म होता है। तारीख आलम इंसान की सियाकारियों से भरी पड़ी है। शायद इसी वजह से कई मजाहिब ने तर्क दुनिया की तालीम दी, ख्वाहिशात नफ्स की मुकम्मल बेसकनी का रास्ता बताया, ताकि नेक फितरत इंसान खूंखार दरिंदा सिर्फ इंसानों की दुनिया से भाग कर जंगलों और वीरानियों में आफियत ढूंढ सकें। लेकिन इकबाल सफर अंदाज नहीं होते, वो इंसान के असल सरिश्त से मायूस नहीं होते। वो कुर्रे अर्ज के हालात को बदलने के लिए हिम्मत बंधवाते हैं, वो ख्वाहिशात के इस्तेसाल को मौत खुदी से ताबीर करते हैं। उनके नज़दीक ख्वाहिशात की नफी उजलत नशीनी और दुनिया को छोड़कर वीरानों में इबादत और रियाजत करना इंसानी फितरत के खिलाफ है। इंसान की तख्लीक का मकसद रहबानियत और फनाइत नहीं, बल्कि आरजू ही तो अहम जिंदगी है। वो फरमाते हैं, जिंदगी दर जुस्तुजु पोशीदा अस्त, असल उ दर आरजू पोशीदा अस्त। इसरार खुदी, कायनात की हर शय में ज़ौक नमूद है, आरजू ही की वजह से कायनात में तख्लीक का अमल जारी और सारी है। कायनात में हर लम्हे सदाए कुन फयाकून आ रही है, नबातात से लेकर इंसानी दुनिया तक हर एक अपने आरजुओं की तकमील के लिए सरगर्म अमल है। लेकिन इंसान चूंकि इल्म रखता है और बाशऊर है, इसीलिए वो अपनी आरज़ुओं की तंजीम करता है, अपने इरादों और अपनी ख्वाहिशात को कवायद और जवाबित का पाबंद करता है। इंसान की कुव्वत अंधी कुव्वत नहीं बल्कि ये कुव्वत इखलाक इकदार की पाबंद है, इसलिए कि इंसान तवाना होने के साथ साथ दाना और बीना भी है। तस्लीम की खोगर है जो चीज है दुनिया में, इंसान की हर कुव्वत सरगर में तकाजा है। चाहे तो बदल डाले हियत चमनिस्तानों की, ये हस्ती दाना है बीना है तवाना है। बागे तरा हिस्सा सोम नज्म इंसान। इकबाल आराम सुकून और तातील को पसंद नहीं करते, बल्कि वो इस्तराब मुश्किलात और अमल पहम की राह दिखाते हैं, इसलिए कि जिंदगी में मुश्किलात और खतरात के बगैर खैर का हुसूल नामुमकिन है। खैर की नशोनुमा के लिए कई मुश्किल मरहलों और इब्तलाओं से गुजरना पड़ता है, गोहरे मकसूद के लिए दश्त पैमाई करनी पड़ती है और खूने जिगर को जलाना पड़ता है। शिकस्त रिस्क और सोजो कशीद मसाफे जिंदगी में नागुजीर मराहिल हैं। फरमाते हैं, सीतजा कार रहा है अजल से ता अमरोज, चिरागे मुस्तफवी से शरारे बू लहबी, हयात शोला मिजाजो गयूर शोरंगेज, सरिश्त उसकी है मुश्किल कुशी जफा तलवी, मकाम बस तो शिकस्तो फिशार ओ सोजो कशीद, मयान कतराए नीसाओ आतिशे अनबी। बांगे दरा ससों। इकबाल की तवज्जो का मरकज फर्द है, फर्द की आज़ादी और तामीर और तरक्की से माशरे और कौम की आज़ादी और तरक्की वाबस्ता है, क्योंकि माशरा और कौम अफराद से बनते हैं। इकबाल का नज़्मुलैन मजबूत और तवाना शख्सियत है, ये शख्सियत खैर की तर्जुमान खैर की नुमाइंदा और खैर की परवरिश करने वाली है। इसके बरक्स कमजोर शख्सियत शर की तरफ मैलान रखती है और वो आसानी से शैतान के धोखे में आ जाती है। शैतान बुराई को मुजयन करके दिखाता है और कमजोर इंसान ज़ाहिरी ज़ीब ज़ीनत से मग़लूब होकर जल्द मिलने वाली मनफियत या लज़्ज़त की तवक्का में बुराई का इरतकाब करता है। इसके बरक्स मजबूत इंसान में खलफिशार नहीं होता, वो हिकमत और तदब्बुर से काम लेता है। उसकी शख्सियत का इस्तेहकाम उसे शैतान के हमलों से महफूज रखता है। मजबूत इरादे वाले इंसान को मुश्किलात पेश आ सकती हैं और उसे नेक रवैये और नेक अमाल की वजह से सब्र आजमा कल्पतों से भी गुजरना पड़ता है, लेकिन वो इन ज़ाहिरी नागवारियों से नहीं घबराता और साबित कदम रहकर कामयाबियों कामरानी हासिल करता है। कुरान हकीम में इरशाद है, वासा अन तकरहु शैउ वहुवा खैरुल लकुम, वासा अन तुहिब्बु शैउ वहुवा शर्रुल लकुम। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 216। तर्जुमा, और हो सकता है तुम एक शय को नागवार समझो लेकिन वो तुम्हारे लिए खैर हो सकता है तुम एक शय की मोहब्बत रखते हो लेकिन वो तुम्हारे लिए शर हो। इब्लीस भी इसी किस्म की मजबूत शख्सियत रखने वाले मर्द हक परस्त से शिकस्त खाकर लज्जत हासिल करता है और वो फरमान पजीर बंदे से पनाह मांगता है। सैद खुद सयाद रा गोईद बगीर, अल अमा अज बंदाए फरमा पजीर, फितरते उ खामो अजमे जईफ, ताबायक जरबम नयार दाई हरीफ, बंदा बायद के पेचद गर्दनम, लर्जा अंदाजद नगाहश तरतनम। ए खुदा यक जिंदा मर्द हक परस्त, लज्जते शायद के याबम दर शिकस्त। जावेद नामा ना लाए इबलीस। इकबाल के नजदीक खैर सदाकत कुव्वत और रोशनी है, जबकि शर जुल्मत इखलाकी पस्ती और कमजोरी है। शर जाहिरी तौर पर मुजयन होता है और उसकी कुव्वत खोखली और आरजी होती है। आज़ादी गैरत और जसारत नज़्म ज़ब्त बुलंद हौसलगी अजीमत रवादारी खिदमत खल्क फ़ालियत और तख्लीकी अमल खैर के मज़ाहिर है। जिन अफराद और अक़वाम में ये सलाहियतें हों वो खैर के नुमाइंदे होते हैं। इसके बरक्स गुलामी और महकूमी तो हम परस्ती बेअमली और इज्जत नशीनी उजलत नशीनी दहशत गर्दी और बदनज़मी इस्तेमारियत तशद्दुद पसंदी और फ़िरक़ावारियत और हविस ज़र ज़र शर के मज़ाहिर हैं। इकबाल महकूम कौम की फरमा पजीरी और गिरावट को इस तरह बयान करते हैं, मेरी नजर में यही है जमाल ज़ेबाई, सर बसजदा है कुव्वत के सामने अफलाक। है अजल से उन गरीबों के मुकद्दर में सुजूद, उनकी फितरत का तकाजा है नमाज बेकयाम। इकबाल जिंदा कौमों को ये निशान बताते हैं कि वो अपने अक्लो शऊर और मुशाहदात और तजुर्बात से इस्तफादा करते हुए नए अफकार को जन्म देती रहती हैं, अपने मसाइल को हल करती हैं और इंसानियत को नई राहों से रोशनास कराती हैं। जहाने ताजा की अफकार ताजा से है नमूद, के संग खश्त से होते नहीं जहां पैदा, खुदी में डूबने वालों के अजमो हिम्मत ने इस आबजू से किए बहरे बेकरां पैदा। ज़र्ब कलीम। इकबाल इंसान को तोहम परस्ती, जहालत, मलूकियत और अंधी तकलीद से आजाद देखना चाहते हैं, क्योंकि इन कमजोरियों से शर्फ इंसानियत और रोशन जमीरी बाकी नहीं रहती। फरमाते हैं, बाकी ना रही तेरी वो आई ना जमीरी, ए कुश्ताए सुल्तानी ओ मुल्लाई ओ पीरी। इकबाल फर्द की शख्सियत के हवाले से फर्द की फरो गुजाश्तों से सर्फ से नजर करते हैं, बल्कि उनका ख्याल है कि इंसान शख्सियत में गलती और खता और तजर्बे के जरिए तादीबी अमल जारी रहता है। जब इंसान अपनी किसी खता या गुनाह पर नादिम होता है तो उसकी शख्सियत से शर के असरात मुंदमिल कर दिए जाते हैं। उसका नफ्स लवामा जब उसे मलामत करता है तो उसकी तामीर कुव्वतें और उसकी फितरत में कार फरमा खैर के दाइयात ज्यादा सरगर्म अमल हो जाते हैं और उसकी शख्सियत में तौबा व अनाबत की खसूसियत अल्लाह ताला को बहुत पसंद आती है और वो उसके दर्जात को बुलंद करता है। मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अरके अनफाल के। इसके बरक्स इकबाल कौमों के गुनाहों के मंतकी असरात को गैर मुतबद्दिल समझते हैं, इसलिए कि कौम ने शर पर इत्तफाक कर लिया है और मजमूई लिहाज से उसके अक्सर अफराद का अमल नाखूब है, इसलिए उस कौम के लिए बर्बादी लाजिम है। कौमों के उरूज व जवाल में उनके अपने आमाल का दखल है। जब किसी कौम में बिगाड़ गालिब आ जाए तो वो कौम मिट जाती है या महकूम हो जाती है। फरमाते हैं, उसकी तकदीर में महकूमी और मजलूमी है, कौम जो कर न सकी अपनी खुदी से इंसाफ, फितरत अफराद से अकमाज भी कर लेती है, करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को माफ। इकबाल खैरोशर की नतीजा दायमी सजा और जजा को करार नहीं देते। उनका ख्याल है कि इर्तकाए शख्सियत में जजा और सजा मराहिल है। दोजख तादीब का एक अमल है जिसका वजूद अमल इस्लाह सर अंजाम देने के बाद खत्म हो जाएगा। अल्लाह की रहमत उसके गजब पर सबकत हासिल कर लेगी। सबकत रहमती अला गजबी, इकबाल के इस ख्याल की बुनियाद कुरान हकीम का इसलूब बयान है। कुरान हकीम में जहाँ दोजख का जिक्र आया है वहाँ ये नहीं कहा गया कि दोजख हमेशा रहेगा, इसके बरक्स जन्नत की अबदियत को कई मकामात पर बयान किया गया है। मसलन, वमन युमिन बिल्लाहि वयअमल सालिहन युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिहि वयुदखिलुहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा अबदा ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير। سورة تغابن, سورة نمبر 64, آیت نمبر 9-10। ترجمہ, اور جو شخص اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرے अल्लाह उससे उसकी बुराइयां दूर कर देगा और उसे जन्नत में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनमें वो अब्दुल आबाद तक रहेगा। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयात को झुटलाया वो सब जहन्नुमी हैं और वो जहन्नुम में हमेशा रहेंगे जब तक जहन्नुम का वजूद होगा। वो बहुत बुरा ठिकाना है। इसी तरह सूरह बैयना में भी जहाँ दोजख का जिक्र है वहां सिर्फ खालिदीना फीहा के अल्फाज आए हैं, लेकिन जहाँ जन्नत का जिक्र है वहाँ खालिदीना फीहा अबदा के अल्फाज हैं। अबदियत सिर्फ जन्नत को हासिल है। जहानत रहमत खुदावंदी की नौ ब नौ तजल्लियात का अवधि और लामुतनाही सिलसिला होगा। इकबाल ने कुरान हकीम के इस नुक्ते को बयान करके बनी नौ इंसान को रजाइत और खुशी का पैगाम दिया है। इकबाल अपने खुतबे बउनवान खुदी, जब्र कदर और हयात बादल मौत में फरमाते हैं, قرآنی آیات میں دوزخ کے بارے میں لفظ خلوت کا استعمال زمانی مدت کے معنی میں کیا گیا ہے، لہذا سیرت و کردار کی تبدیلی کے لیے بھی وقت کی ضرورت ہوگی۔ دوزخ دراصل تعریف کا ایک عمل ہے تاکہ جو خودی پتھر کی طرح سخت ہو گئی ہے وہ پھر رحمت خداوندی کی نسیم جاں فضا کا اثر قبول کر سکے، لہذا جنت بھی عیش و آرام اور تعطل کی کوئی حالت نہیں، زندگی ایک ہے اور مسلسل، اور اس لیے انسان بھی اس ذات لامتناہی کی نو با تجلیات کے لیے اس کی ہر لحظہ نئی شان ہمیشہ آگے ہی بڑھاتا رہے گا۔ خودی کی زندگی اختیار کی زندگی ہے، اس کا ہر عمل ایک نیا موقع پیدا کرتا ہے، اور یوں اپنی اخلاقی اور ایجاد و تباہی کے نئے نئے مواقع ہم پہنچاتا ہے۔ اقبال انسان کو نائب خدا کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، جس کا ایک طرف یہ فریضہ ہے کہ وہ فطرت کو مسخر کرے اور دوسری طرف باہمی تعلقات میں احترام آدمیت کے اصول کو اختیار کرے۔ ان دونوں طریقوں سے انسان کی قوت اور اقتدار میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی خودی مضبوط ہوتی ہے اور وہ خالق حقیقی کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تسخیر فطرت کے ذریعے انسان نوامیسو قوانین فطرت کی آگاہی حاصل کرتا ہے اور تخلیق کے رازوں سے آشنا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک انداز ہے قرب خداوندی کا۔ طبیعیاتی علوم میں ترقی کا نصب العین انسان کی آزادی اور اس کی خوشحالی اور بہتری ہونا چاہیے، اور یہ تبھی ممکن ہے جبکہ سائنسی ایجادات و اختراعات کو انسانی فلاح و بہبود کی خاطر استعمال کیا جائے۔ اگر سائنسی ترقیاں انسان کو مشین کا غلام بنا دیں اور اسے مادیت کا اسیر کر دیں تو اس کا باطن روشن نہیں ہوتا۔ دوسری طرف جو قوم صحیح و عمل سے غافل ہو جائے اور وہ تسخیر فطرت کے علوم سے بہرہ پر ہو وہ کارگاہ حیات میں بہت پیچھے رہ جاتی ہے، بلکہ طاقتور قوموں کی غلام بن جاتی ہے۔ اقبال اس طرف اشارہ کرتے ہیں، خودی کی موت سے اندروں بے نور، خودی کی موت سے مشرق ہے مبتلا جزام، خودی کی موت سے ہندی شکستہ بالوں پر، قفس ہوا ہے حلال اور آشیانہ حرام، مرگ خودی ضرب کلیم۔ اقبال انسان کو قوی اور نیک دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا پیغام ہے کہ انسان باطنی قوتوں کو بیدار کرے اور ظاہری طور پر بھی وسائل اور طاقت حاصل کرے، اور اسی طرح معاشرے بھی اخلاقی لحاظ سے قوی ہوں۔ وہ مزید برآں کہتے ہیں کہ آزادی اچھائی کے لیے بنیادی شرط ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قوت کے حصول اور آزادی کے استعمال میں کیا اصول کار فرما ہونا چاہیے؟ اقبال ایک بنیادی اصول کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور وہ ہے احترام آدمیت کا اصول۔ جب انسان ایک دوسرے کے حقوق کا پاس کریں گے اور وہ بقائے باہمی پر یقین و عمل کر کے ایک عالمگیر برادری کی حیثیت سے آگے بڑھیں گے تو وہ خیر کے راستوں پر چل رہے ہوں گے۔ انسانی اخوت اور احترام انسان کے اصولوں پر عمل کر کے ابلیس کے ارادوں کو شکست دی جا سکتی ہے، اور ان اصولوں میں ہی انسانیت کی بھلائی ہے۔ اقبال کے نزدیک طاقت خیر کا جزو لا ینفیک ہے۔ طاقتور قوم کی تعبیر خیر ہی معتبر اور نافذ العمل ہوتی ہے۔ ہاں، اقبال جس طاقت کو خیر کہتے ہیں وہ دینی اور اخلاقی اقدار کی پابند ہوتی ہے، ورنہ بصورت دیگر وہ چنگیزیت ہے۔ ہاں، دین اور اخلاقیات کی تعبیر اور نمائندگی کا حق فرد واحد یا مخصوص مذہبی گروہ کو حاصل نہیں۔ اقبال ملوکیت اور کلیسائی استبدادیت کے مخالف ہیں۔ ان کے نزدیک اخلاقی اقدار میں فیصلہ کن جمعیت حیثیت عوام کو حاصل ہے، اور اسی طرح عالمی سطح پر صرف طاقتور قوم خیر کا تعین کرنے کا حق نہیں رکھتی، بلکہ عالمی ضمیر ہی معیار خیر ہو سکتا ہے، کیونکہ پوری انسانیت کبھی بھی برائی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ حوالہ جات، نمبر 1، ول ڈیونٹ، داستان فلسفہ، صفحہ 350-351، مترجم سید عابد علی عابد، فکشن ہاؤس، لاہور، 1995۔ نمبر 2، آئیزن، صفحہ 86۔ نمبر 4، سید عبدالواحد، مقالات اقبال، آئینہ ادب، لاہور، 1988، صفحہ 311۔ نمبر 4، محمد اقبال، تجرات، فکر اقبال، بزم اقبال، لاہور، 1973، صفحہ 76-78۔ نمبر 5، آئیزن، صفحہ 119۔ किस्साए आदम को रंगी कर गया किसका लहू। आसमानी मजाहिब में इब्लीस बदी की अलामत, बुराई का सरचश्मा और शर का सबब अव्वल समझा जाता है। इब्लीस का जिक्र इलाहियात के लिटरेचर में बकसरत मिलता है। पुराने हकीम में जहाँ कहीं इब्लीस का जिक्र है, वहाँ उसे एक शख्सियत की हैसियत से पेश किया गया है। उसका एक मुनफरिद वजूद है। वो अपनी राय और इरादों का बरमला इजहार करता है और खुदा के मुकाबिल आने की जसारत करता है। जब इब्लीस शैतान के किरदार में आता है तो वो दिलों में वसवसे डालता है। मुख्तलिफ राहों, तरीकों और तरकीबों से इंसान को बुराई और खुदा की नापरमानी की तरफ तरगीब देता है। शैतानी किरदार में वो तन्हा नहीं होता, बल्कि उसकी ज़ुर्रियत उसकी मददगार होती है। इंसानों में से भी उसके दोस्त और हामी होते हैं और जिन्नात में से भी उसके मददगार शयातीन होते हैं। पुरानी अल्फाज में वो शयातीनुल जिन्ना वल इंस कहलाते हैं। अब तफसील से देखते हैं कि कुरान मजीद और इस्लामी रिवायात में इब्लीस की क्या क्या खसूसियात बयान की गई हैं और वो अपनी शैतानियत के असर नफूस को किन किन तरीकों और वसीलों से बरूएकार लाकर इंसान को बहकाता है। कुरान हकीम में इब्लीस का पहला तारुफ इस तरह कराया गया है, और जब हमने फरिश्तों को कहा कि आदम के लिए सजदा रेज हो जाओ तो उन्होंने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, उसने इनकार किया और तकबर किया और वो काफिरों में से था। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 34। कई रिवायात में आया है कि इब्लीस का नाम अजाजील और हारिस था और असलन वो जिन था। ये भी तस्री है कि वो अपनी इबादत और तस्बीह की बदौलत जुमराए मलाइका में शामिल कर लिया गया था। कुरान की आयत बाला से ये इशारा भी मिलता है कि जब फरिश्तों से सजदा आदम के लिए कहा गया तो इब्लीस भी उनमें शामिल था और उसे भी सजदा आदम का हुक्म दिया गया था। इसीलिए तो कुरान कहता है कि इब्लीस के अलावा सब ने सजदा किया। सूरह अल आराफ में उसकी तफसील है कि इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को क्यों सजदा नहीं किया था, और इब्लीस ने खुद अपने किरदार के बारे में जो बयान दिया था उसका भी यहाँ तस्किरा है। खुदा और इब्लीस के माबैन तफसीली मकालमा ये है, और हमने तुम्हें जमीन में तमक्कुन अता किया और इसमें तुम्हारे लिए सामान्य मईशत बनाया। थोड़े हैं तुम में से जो शुक्र बजा लाते हैं। हमने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारी सूरतें बनाई। फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, बस सबने किया सिवाय इब्लीस के। वो सजदा करने वालों में से ना हुआ। उस अल्लाह ने कहा, तुम्हें किस चीज ने सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुम्हें हुक्म दिया था। उस इब्लीस ने कहा कि तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से पैदा किया। उस अल्लाह ने फरमाया, यहाँ से नीचे उतर जाओ, ये तेरे लिए नहीं कि तुमने तकब्बुर किया है, निकल जाओ, बेशक तू कमीनों में से है। उस इब्लीस ने कहा, मुझे मोहलत दीजिए उस दिन तक जब औलाद आदम दोबारा उठाई जाएगी। उस अल्लाह ने फरमाया, हाँ बेशक तुम मोहलत पाने वालों में से हो। उस इब्लीस ने कहा कि आपने मुझे राह से नीचे गिरा दिया है, मैं जरूर औलाद आदम के लिए तेरी सीधी राह पर बैठूंगा और फिर मैं उनके सामने, उनके पीछे, उनके दाएं और बाएं तरफ से उन पर हमलावर होऊंगा और आप उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। उस अल्लाह ने फरमाया, निकल जाओ यहाँ से रानदाय दरगाह होकर, अगर इनमें से कोई तेरी तबाह करेगा तो मैं तुम सब से जहन्नुम को भरूंगा। सूरह अल आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 10-18। इससे अगली आयत में जिक्र है कि आदम को अल्लाह ने मैं अपनी अहलिया के जन्नत में रहने का हुक्म दिया और फरमाया कि जहाँ से चाहो तुम दोनों इसके फल खाओ, लेकिन तुम दोनों उस दरख्त के करीब न जाना वरना जालिमों में से हो जाओगे। इससे आगे 20-22 आयात में शैतान को वसवसा अंदाजी और उसके नताइज का तफसीली जिक्र है। यहाँ इब्लीस को शैतान कहकर पुकारा जा रहा है। इब्लीस शायद जाती नाम है और शैतानियत उसकी सिफत है जिसके जरिए इब्लीस बराह रास्त या बिलवास्ता इंसान को बहकाता है। इब्लीस का लोग भी मतलब है गमगीन होना, इनकार करना और मायूस होना। ये अफील के वजन पर है। लफ्ज शैतान का मतलब है खबीस, सरकश, खुदसर, दूर होने वाला। अरबी में शैतान एक किस्म के सांप को भी कहते हैं। इसके अलावा अहले अरब जिन्नो इंस और हैवानात में से बागी और सरकश को शैतान कहते हैं। शैतान बहकाने के लिए दिलावेज और मौसल तरीके इख्तियार करता है। इसके तरीका वारदात का कुरान में इस तरह जिक्र है। फिर बहकाया उन दोनों को शैतान ने, ताकि खोल दे उनके सामने जो छुपाई गई थी एक दूसरे से उनकी शर्मगाहें, और कहा, नहीं रोका है तुमने, तुमको तुम्हारे रब ने उस तरफ से, मगर कहीं ना हो जाओ तुम फरिश्ते या ना हो जाओ तुम हमेशा जिंदा रहने वाले। और कसम खाई उसने उनके सामने कि यकीन करो मैं तुम दोनों को, दोनों का हकीकी खैर खुआ हूँ। फिर रफ्ता रफ्ता अपने ढब पर ले आया उन दोनों को धोखा देकर। फिर जब चखा उन दोनों ने मजा उस तरफ का, तो खुल गए उनके सामने उनके सितर, और लगे वो ढांपने अपने आप को जन्नत के पत्तों से। और पुकारा उनको रब ने, क्या नहीं रोका था मैंने तुम्हें इस दरख्त के पास जाने से, और ना कहा था तुमसे कि यकीनन शैतान तुम दोनों का दुश्मन है खुला। सूरह अल आराफ, सूरह नंबर 7, आयत नंबर 20-22। मुआशी इस्तदलाल के साथ शैतान इस तरह इंसान पर असरअंदाज होता है। पार्ट नंबर 3 यहाँ मुकम्मल होता है।